श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। तो अभी चैतन्य चरितामृत की चर्चा करके अब ये पांचवा क्लास है और पहले अध्याय की शुरुआत में हम सबसे इस पहले श्लोक का पाठ भी कर चुके हैं, वंदे गुरुन ईश भक्तान, और संक्षेप में इसकी चर्चा भी हुई थी, परंतु और थोड़े विस्तार में अब ये चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि जब हम मंगलाचरण की चर्चा कर रहे थे तो ये बताया गया था कि मंगलाचरण के तीन प्रकार होते हैं या तीन उद्देश्य होते हैं, वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरुआत में ही कहते हैं कि जहाँ तक पहले दो श्लोकों का सवाल है उसमें उन्होंने सामान्य और विशेष रूप से नमस्कार किया है भगवान को। प्रथम दुई श्लोक इष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे दुईटो प्रकार। तो सामान्य और विशेष रूप से भगवान के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया है। तो ये नमस्कार हम इस चैतन्य चरितामृत के पहले अध्याय में सुनेंगे। नमस्कार तो पहले दो श्लोकों में करते हैं। मंगलाचरण का पहला श्लोक यह है, वंदे गुरुन ईश भक्तान। तो इसमें उन्होंने सामान्य रूप से भगवान का नमस्कार किया है। और दूसरा श्लोक जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे उसमें वो विशेष रूप से भगवान को नमस्कार करते हैं। और ये जो पहले दो श्लोक हैं मंगलाचरण के, इनकी व्याख्या वो पहले अध्याय में करते हैं। मंगलाचरण के तुरंत बाद इन दो श्लोकों के ऊपर व्याख्या शुरू करते हैं और अंत तक ये विषय चलता है। फिर दूसरे अध्याय से मंगलाचरण के तीसरे श्लोक की व्याख्या होती है। तो आइए फिर से स्मरण करते हैं इस श्लोक का, फिर से पाठ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तेः कृष्ण चैतन्य संयकम् वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संयकम्। हाँ बोलिएगा। ईशम ईशावतारकान् तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संयकम्। माताजी हिंदी हिंदी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके अंशों, उनकी शक्तियों तथा आदि भगवान साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या हुई है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण या तो श्री कृष्ण चैतन्य हैं, और इन एक सत्य में छह सत्य हैं, छह में एक। तो इन छहों का वर्णन अब यहाँ इस मंगलाचरण के पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। तो ये छह सिद्धांत जो हैं परम सत्य के, ये कौन से हैं? पिछली बार हम कर चुके थे संक्षेप में, तो आइए कोई पढ़िएगा। पहला कौन सा है? गुरुन। तो यहाँ जैसे पहले कह चुके हैं, ये बहुवचन है, क्योंकि कई गुरु हो सकते हैं, अलग प्रकार के गुरु हैं जिनकी चर्चा अब हम करेंगे। उसके नीचे भी क्या लिखा है पढ़िएगा। माइक कहाँ है? माइक में से आध्यात्मिक गुरु। दूसरा, दूसरे सिद्धांत कौन से हैं परम सत्य के? ईश भक्तान। ईश मतलब भगवान, तो भगवान के भक्त। और तीसरा, ईश अवतार, क्योंकि उनके प्रति नमस्कार कर रहे हैं इसलिए अवतार कान कह रहे हैं। तो ईश अवतार, भगवान के विभिन्न अवतार। फिर चौथा सिद्धांत कौन सा है परम सत्य का? तत् प्रकाशांश, प्रकाश, उनके विभिन्न प्रकाश या उनके अंश, उनके पूर्ण अंश। उसके बाद तत् शक्ति है, उनकी शक्तियां, भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। और अंत में ईशम, ईशम मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो आप में से जो गहराई में चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहते हैं, इन छहों सिद्धांतों के नीचे थोड़े श्लोक नंबर लिखे गए हैं, उनको आप लिख के रख सकते हैं। इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके पढ़ाई में आपको साथ देगी, ताकि आप जान जाएंगे कि इस पहले अध्याय में इन छह श्लोकों की चर्चा कौन से श्लोकों में कविराज गोस्वामी करते हैं। पहले सिद्धांत की चर्चा थोड़े श्लोकों में है, फिर दूसरे, शायद आप में से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इतने दूर से, दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बाद में आके आप ये श्लोक नंबर आदि आप लिख सकते हैं। तो ये केवल उन भक्तों के लिए है जो गहराई में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जब आप पढ़ाई करेंगे और आप गुरुन पहले सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन श्लोकों के ऊपर आप फिर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ये छह सिद्धांत अभिन्न हैं एक दूसरे से, और कविराज गोस्वामी हम सबको बताते हैं कि अगर भगवान ईश की उपासना करनी है तो हमें इन छहों की करनी होगी, क्योंकि भगवान अकेले नहीं होते, भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं, अपने अंश अवतारों के साथ होते हैं, प्रकाशों के साथ होते हैं, अपने शक्तियों के साथ होते हैं, और उनके जो प्रतिनिधि हैं गुरुजन उनके भी साथ में होते हैं। इसलिए भगवान को अकेले हम नहीं पूज सकते हैं, भगवान की उपासना करनी है तो इन छहों को साथ में करना चाहिए। और ये छह जो हैं ये भगवान के ही या परम सत्य के ही भिन्न भिन्न प्रकट रूप हैं, परंतु भिन्न भिन्न होते हुए भी इनमें एक आध्यात्मिक स्तर में अभिन्नता है। इसलिए इसे एक में छह ऐसे कहा गया है, परम सत्य। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतने गहराई में परम सत्य का विश्लेषण किया है और उनके शिष्यों के माध्यम से ये उपदेश हम तक पहुँचे हैं। इतनी गहराई में परम सत्य की व्याख्या किसी भी अन्य ग्रंथ में नहीं पाई जा सकती, किसी भी अन्य धर्म के ग्रंथ में या किसी भी कहीं भी किसी भी दार्शनिक के पास जाइए, इतने विस्तार में हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा जितना कि चैतन्य चरितामृत में हमें पाया जाता है। तो अब इन छहों के उदाहरण हम देखेंगे, थोड़ा पलट दीजिए, कोई अगर साथ में बैठेंगे तो आप करते रहिएगा। नहीं ये नहीं, और उदाहरण थे थोड़े, घुमाते जाइए, घुमाइए, नहीं और एकदम अंत, नहीं नहीं नहीं, एक चार्ट वो मिस कर गए बीच में, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे बता देते हैं हम वो चार्ट में क्या है, और घुमाइए फिर से उसमें आइए पहले वाले में, तो कविराज गोस्वामी यहाँ पर इन छहों के उदाहरण देते हैं। सबसे पहले गुरु, वो अपने गुरुओं का उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजनों की श्रेणी में आते हैं नित्यानंद प्रभु और षड गोस्वामी वृंदावन के। और नित्यानंद प्रभु और षड गोस्वामी में अंतर क्या है वो भी आगे वो बताने वाले हैं, किस प्रकार के गुरु हैं वो। और फिर ईश भक्तान, भगवान के अनगिनत भक्त हैं, इनकी गणना कोई नहीं कर सकता। परंतु एक उदाहरण कविराज गोस्वामी देते हैं और वो हैं श्रीवास ठाकुर। फिर तीसरे हैं ईश अवतार कान, ईश अवतार भगवान के अवतार, भगवान के अवतार भी अनेक हैं, और इनमें से एक जिनका उदाहरण कविराज गोस्वामी देते हैं वो हैं अद्वैत आचार्य। और उसके बाद तत्प्रकाशान, उनके प्रकाश, ये प्रकाश शब्द का महत्व क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हम कल सुनेंगे जब प्रकाश की व्याख्या होगी तब। तो इनका उदाहरण है नित्यानंद प्रभु। और अंत में तत् शक्ति ही, भगवान की शक्तियाँ, जैसे गदाधर पंडित। और अंत में ईशम, मतलब साक्षात स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। तो ये उदाहरण है। तो अभी एक के बाद एक हम इन छहों सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरुन, ये एक शब्द की चर्चा आज करेंगे। वैसे चर्चा काफ़ी लंबी है, लेकिन आज एक पौने घंटे में हम इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो घुमाइएगा जरा। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं कि गुरु कौन होता है 35वें श्लोक में, क्योंकि 34वें में फिर से कविराज गोस्वामी ने पहले श्लोक को दोहराया है, और इसके बाद 82वें श्लोक तक केवल इस श्लोक की चर्चा की है। तो गुरु कौन है इसकी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। गुरु वो व्यक्ति है जो शास्त्रों के आधार पर निर्देश देता है, अपने मन से नहीं, केवल जो वैदिक शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है केवल उसके आधार पर जो ज्ञान देता है अन्यों को वो गुरु कहलाता है। ये बहुत ही सरल एक परिभाषा है। वैसे गुरु शब्द का मतलब है भारी, जो ज्ञान से भारी है, और इसकी परिभाषा भी भारी है, परंतु इतनी गहराई में अब नहीं जाएंगे। इतना कहना अब के लिए पर्याप्त है कि गुरु वो व्यक्ति है जो अन्यों को शास्त्र के आधार पर ज्ञान देता है। ज्ञान का संशोधन करके नहीं देता वो ज्ञान, जो शास्त्रों से पाया जाता है, जो भगवान से पाया जाता है, उसी ज्ञान को दोहराता है। कविराज गोस्वामी कहते हैं, मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरुगण तहार चरण आगे कोरिये वंदन। सबसे पहले कोरिये वंदन, मैं वंदन करता हूँ तहार चरण आगे, उनके चरणों में, जो मंत्र गुरु हैं और जो शिक्षा गुरु हैं। मंत्र गुरु आर जो तो शिक्षा गुरु जन, इसका मतलब है कि दो प्रकार के गुरु होते हैं। यहाँ देखिए, एक है मंत्र गुरु जिनको हम दीक्षा गुरु भी कहते हैं, और दूसरे हैं शिक्षा गुरु। तो मंत्र गुरु कौन है? जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं। और शिक्षा गुरु कौन है? जो हमें उपदेश देते हैं शास्त्रों से। और इसके बारे में भी यहाँ श्लोक नंबर बताए गए हैं। आप में से जो पढ़ नहीं सकते आप बाद में नोट कर सकते हैं, ताकि जब आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत गहराई से ये आपके काम में आएंगे। वैसे यहाँ पर कविराज गोस्वामी जब और चर्चा करने वाले हैं अलग अलग गुरुओं के बारे में, गुरुजनों के बारे में, वो थोड़ी बहुत संक्षेप में अपने गुरुओं की का उल्लेख भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले मेरे शिक्षा गुरुजन षड गोस्वामियों को नमस्कार करता हूँ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। मेरे जो शिक्षा गुरु हैं वो हैं श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये उनके शिक्षा गुरु हुए। और उनके दीक्षा गुरु कौन हैं, कोई बता सकते हैं? कविराज गोस्वामी के दीक्षा गुरु कौन हैं? नित्यानंद प्रभु। वैसे कविराज गोस्वामी का जन्म स्थान एक गाँव है जिसका नाम है झमटपुर, जो बंगाल में है। तो ऐसे कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु स्वयं वहाँ प्रकट हुए थे और उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को वहाँ मंत्र दीक्षा दी थी, इसलिए वो उनके मंत्र या दीक्षित शिष्य हो गए। और ये भी तो कथा आप सब जानते हैं, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं कविराज गोस्वामी के स्वप्न में आए थे और उन्होंने वृंदावन की ओर इशारा करते हुए कहा था कि तुरंत वृंदावन जाना, वहाँ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और उस लीला का भी, लीला की चर्चा भी की थी, मीनकेतन, रामदास आदि। और कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन चले आए। वैसे प्रेम विलास में कहा गया है कि कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी दीक्षा ली, परंतु यहाँ स्वयं इसी ग्रंथ के 40वें अध्याय में, 40वें श्लोक में, इसी अध्याय के स्वयं कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ही मेरे गुरु हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में उन्होंने शिक्षा गुरु के रूप में ही उनको संबोधित किया है। वैसे थोड़ा घुमाइएगा, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं और प्रभुपाद जी भी थोड़ी अपनी तात्पर्य में अच्छी तरह से समझाते हैं कि दोनों वास्तव में कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, हालांकि आदान प्रदान भिन्न हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अब किस प्रकार से अभिन्न है, क्योंकि मायावादी लोग भी कहते हैं कि हम सब भगवान से अभिन्न हैं, हम सब भगवान हैं। तो ये आगे चल के थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे कि किस दृष्टि से ये कहा जाता है कि ये अभिन्न है। परंतु सबसे पहला सिद्धांत ये है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को दोनों को भगवान कृष्ण से अभिन्न समझना चाहिए। दूसरी कौन सी बात है, थोड़ा पढ़िएगा। बिल्कुल, तो मार्गदर्शन करना और जो बद्ध जीव जगत में है अनादिकाल से, उनका उद्धार कर भगवत धाम में उनको भेजना, ये उनका कार्य है दोनों का, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। दोनों का उद्देश्य, दोनों का कार्य एक ही है। आगे पढ़िएगा।
दीक्षा गुरु केवल एक हो सकते हैं, परंतु शिक्षा गुरुओं की कोई सीमा नहीं है।
सर्वसाधारण ये पद्धति है, दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जिनसे भी हम भगवत भक्ति के बारे में ज्ञान पाते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु हो जाते हैं। वास्तव में मूल गुरु कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अनेक व्यक्तियों के माध्यम से बद्ध जीव का उद्धार करते हैं, और इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। घुमाइएगा। तो ये जो भी क्लास हो रहा है चैतन्य चरितामृत का, ये जो रोज प्रवचन होते हैं उस प्रकार से नहीं है। ये इस दृष्टि से है कि जो लोग इस ग्रंथ को गहराई में पढ़ना चाहते हैं उस दृष्टि से किया गया है, इसलिए यहाँ पे सब बोर्ड पे लिख के वगैरह किया जा गया ताकि आप अच्छी तरह से लिख सकें, पढ़ाई कर सकें। और प्रभुपाद जी बहुत ही विस्तार में अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु स्वीकार करने का महत्व क्या है, ये क्यों अनिवार्य है, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु स्वीकार करे। तो पढ़िएगा, पहला कारण क्या है?
बिना गुरु के आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते।
बिना गुरु के आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। ये भी विषय बहुत लंबा है, इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु स्वीकार नहीं करते हैं तो अपने आध्यात्मिक पथ में वो भ्रमित हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, अनेक बाधाएं आएंगी, और इस प्रकार से उनकी प्रगति ठीक ठाक भगवत धाम की ओर नहीं हो पाएगी। ये तो शास्त्रों का निर्देश है, हर एक शास्त्र में बताया गया है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कि गुरु को स्वीकार करना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, विशेष करके जो व्यक्ति भगवत धाम लौट के जाना चाहता है। दूसरा,
गुरु की सेवा अनिवार्य है, यह सेवा प्रत्यक्ष वयु या उनके निर्देशों वाणी की हो सकती है।
वयु नहीं, वपु हो। तो गुरु की सेवा भी आवश्यक है, और गुरु की सेवा दो प्रकार से होती है, एक है वपु हो प्रत्यक्ष सेवा, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वाणी सेवा, उनके आदेश की सेवा। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि गुरु की वाणी, गुरु के आदेश जो हैं वो शिष्य का गर्व है, वो शिष्य का धन है, और शिष्य हमेशा उस आदेश को पालन करता है, उसको अपने हृदय में रखता है। हम देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर थे अपने प्रत्यक्ष शारीरिक रूप में, तो उनके कितने हजारों हजारों शिष्य थे, तो ये संभव नहीं था कि सारे शिष्य जो हैं वो उनकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर पाए। परंतु प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने चिट्ठियों के द्वारा, संवादों के द्वारा, उन्होंने तरह तरह के आदेश उपदेश दिए थे, इसलिए जितने भी इस्कॉन के अंदर भक्त थे वो वो बड़े श्रद्धा भाव से प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करते थे और इस प्रकार से वो प्रभुपाद जी के निकट थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल शारीरिक निकटता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वाणी या आदेश का पालन करना है। कोई व्यक्ति भले गुरु के साथ में रहे परंतु आदेश का पालन नहीं करे तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति भले शारीरिक दृष्टि से दूर रहे गुरु से परंतु आदेश का पालन करता रहे तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो प्रत्यक्ष सेवा को कहते हैं वपुः सेवा। वपुः मतलब शरीर, तो शरीर प्रत्यक्ष रूप से करना सेवा, और वाणी मतलब उनका आदेश। तो वाणी सेवा और वपुः सेवा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। और विशेष करके दीक्षा गुरु के बारे में वैसे तो सामान्य तौर से गुरु के व्याख्या की है, परंतु आगे चल के फिर वो शिक्षा गुरु की व्याख्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर दीक्षा गुरु ही हम इसको जान लेते हैं कि इस शब्द का तात्पर्य है। कविराज गोस्वामी यहाँ पर बतला रहे हैं कि गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए, गुरु कौन होते हैं। हाँ, पढ़िएगा पहला पॉइंट क्या है।
सदैव भगवान के सेवक।
भगवान के सेवक है, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं तो वो कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु के अंदर ये सेवा भाव होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को घोषित भगवान ऐसे घोषित करते हैं, और उनके अनुयायी या उनके शिष्य भी उनको भगवान कह के संबोधित करते हैं। और ऐसे कोई हैं जो कहते हैं कि हम तो अपने आप को भगवान नहीं कहते, परंतु उनके शिष्य जब उनको भगवान कहते हैं तो उनको मना नहीं करते, उनको डांटते नहीं हैं, तो ये सही गुरु नहीं है। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे अगर शिष्य कोई मुझे कृष्ण बुलाते हैं तो मैं उनको सही तरह से डांटता हूँ। वास्तव में प्रभुपाद ने ऐसे किया था। एक बार ऐसे हुआ कि किसी ने कहा कि ये प्रभुपाद भगवान के अवतार हैं, तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए थे, उन्होंने उन शिष्यों को काफ़ी दंड दिया था उस समय। तो प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को फैलाना चाहते थे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो गुरु का सबसे पहला लक्षण ये है या उसकी उनकी योग्यता ये है कि वो भगवान के सेवक हैं, और ये सेवा भाव होना उनके अंदर ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात,
फिर भी भगवान के प्रत्यक्ष रूप माने जाते हैं।
सेवक होने के बावजूद वो भगवान के प्रत्यक्ष रूप माने जाते हैं, मतलब भगवान से अभिन्न। प्रभुपाद जी अन्य जगह बताते हैं कि एक होते हैं सेव्य भगवान, जो वो भगवान जिनकी सेवा की जाती है वो है श्री कृष्ण, और दूसरे हैं सेवक भगवान, वो है बलराम। बलराम भी भगवान ही हैं, परंतु वो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तरह तरह से, अलग अलग भावों से। तो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, और आदि गुरु मतलब जितने भी लोग गुरु की सेवा करते हैं भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए, वो वास्तव में बलराम जी या तो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें भी सेवक भगवान कहते हैं। भगवान साक्षात एक दृष्टि से हैं कि वो भगवान के सेवक हैं, तो ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। वो भगवान के सेवक हैं और अपने आप को भी सेवक मानते हैं, और दूसरी बात यही उनका गुण है जिससे कि वो भगवान से अभिन्न माने जाते हैं। अगर वो अपने आप को सेवक समझना बंद करें तो फिर वो भगवान से भी भिन्न हो जाते हैं, इस दृष्टि से कि वो गुरु नहीं कहलाते उसके बाद। तीसरी बात,
कृष्ण गुरु के रूप में भक्त का उद्धार करते हैं।
और यहां बड़े सुंदर ढंग से फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण गुरु के रूप में आके शिष्य का उद्धार करते हैं। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गणे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। गुरु कृष्ण रूप होना शास्त्र प्रमाणे, गुरु कृष्ण रूप होना, तो स्पष्ट यहां कहते हैं कि गुरु कृष्ण रूप है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गणे, और गुरु के रूप से, गुरु के माध्यम से, गुरु रूप में कृष्ण भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। तो जीव का उद्धार कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं, परंतु किस माध्यम से? गुरु के माध्यम से। तो उद्धारक हैं केवल कृष्ण, माध्यम है गुरु। इसलिए अगर गुरु को भी कहा जाए कि उद्धारक है, यह गलत नहीं है, परंतु मूल उद्धारक कृष्ण है। आगे इसको घुमाइएगा, घुमाइए। तो फिर आगे कविराज गोस्वामी बताते हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से जब श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उद्धव गीता से है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं, जो ये श्लोक यहां पे है, आप सब सुन पढ़ पा रहे हैं ना? आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। बोलिएगा। आचार्यं मां विजानीयान् नेत कर्हिचित्। देवमयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयान् मन्येत कर्हिचित्। देवमयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयान् नाव मन्येत कर्हिचित्। सर्वदेवमयो गुरुः। तो यहां इस श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, आचार्य, आचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे आचार्य जो अपने आचरण से सिखाते हैं, आचार्य आचरण शब्द पर आधारित है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने ही उपदेशों का आचरण नहीं कर रहा है, तो वो आचार्य या गुरु नहीं कहला सकता। अगर कोई कहता है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, खुद नहीं करते हैं, तो कैसे हो सकते हैं गुरु? तो आचरण होना आवश्यक है। तो इस श्लोक में आचार्य के बारे में चार चीजें भगवान कृष्ण ने कही हैं। पहली बात है आचार्यम माम विजानीयान। इसका मतलब क्या है? पढ़िएगा।
भगवान से अभिन्न मानना चाहिए।
आचार्य को भगवान से अभिन्न मानना चाहिए। दूसरा है न अवमन्येत कर्हिचित, मतलब
कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए।
न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत, पढ़िए,
कभी उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, अतः द्वेष नहीं करना चाहिए।
असूया मतलब द्वेष। और अंत में सर्वदेवमयो गुरु हो,
वह सभी देवी देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं।
तो ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भागवत में है, तो ऐसे हमें जान लेना चाहिए। तो आचार्य क्यों कहते हैं ये वास्तव में श्लोक, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जबकि उद्धव उनको पूछते हैं वर्ण और आश्रमों के बारे में, और वर्णों और व्याख्या आश्रमों की व्याख्या करते समय जब ब्रह्मचारी आश्रम की बात आती है तो ब्रह्मचारी को कैसे होना चाहिए और गुरु के बारे में कैसे सोचना चाहिए विशेष करके यहाँ पर लिखा गया है। परंतु ये केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं, ये सभी के लिए है वास्तव में। तो आचार्य वो होते हैं जो गुरु के अपने संरक्षण में रखते, शिष्य को अपने संरक्षण में रखते हैं, दीक्षित करते हैं, दीक्षित करने के बाद वेदों का ज्ञान देते हैं, और इस प्रकार से प्रशिक्षण देते हुए उनको भगवान के धाम में भेजने की तैयारी करते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। इसको कहते हैं उपनीति, उपनयन, उपनीति। गुरु अपने पास में ले बिठाते हैं शिष्य को, अर्थात कि जो भी व्यक्ति योग्य है इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, भले उसका जन्म शूद्र परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, वैश्य परिवार में, क्षत्रिय परिवार में क्यों ना हुआ हो, अगर वो इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए योग्य है तो वो दीक्षित हो सकता है। और इसलिए इसके लिए एक पद्धति है और इसको एक संस्कार कहते हैं। वायु पुराण में भी प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य वो हैं जो सारे वेदों के तात्पर्य को जानते हैं और इसके सार को अन्यों को सिखला सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य है। और भगवान जब कहते हैं आचार्य माम विजानीयाम, वो कहते हैं कि मैं ही प्रकट होता हूँ, मेरी असीम अनुकंपा का प्राकट्य गुरु रूप में होता है। तो कहते हैं मैं इस प्रकार से प्रकट हो जाता हूँ गुरु के रूप में ताकि अन्यों का, बद्ध जीवों का उद्धार हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपने आप को भगवान और भक्त के बीच में एक निमित्त नहीं समझे तो फिर वो गुरु नहीं कहलाता है। तो सेवा भाव तीव्र होना चाहिए, पूरी तरह से वो भगवान के भक्ति में लगे रहना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपने ही कार्यों को भगवान की लीलाओं के समान समझना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि ऐसे वृंदावन में, अन्य जगह में कई बार होता है। तो ये सिद्धांत प्रभुपाद जी बहुत सख्ती से अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आचार्य माम विजानीयान या गुरु साक्षात कृष्ण हैं, इसका क्या मतलब है। और वो बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि गुरु को केवल हमें मुकुंद या श्री कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए, गुरु भगवान से भिन्न, उनसे स्वतंत्र कोई नहीं है। अगर गुरु को भगवान से अलग किया जाए तो फिर वह गुरु नहीं रहते। तो शिष्य को चाहिए कि गुरु को हमेशा भगवान के संबंध में देखा जाए। जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में भी कहते हैं कि जब कोई भक्त गुरु और शिवजी को भगवान से भिन्न, भगवान से अभिन्न मानता है तो वो केवल इस दृष्टि से मानता है कि गुरु या शिवजी भगवान के बड़े प्रिय सेवक हैं, वो भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए वो भगवान से अभिन्न माने जाते हैं और इसलिए उनकी सेवा भगवान के समान ही करनी चाहिए। और हम हर रोज प्रभुपाद समाधि में, प्रभुपाद जी के समाधि मंगल आरती के समय गुरुवाष्टक हम गाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा विरचित, और इसमें हम क्या कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव, प्रिय एव वो बहुत प्रिय है भगवान के, तस्य तस्य मतलब गुरु के, इसलिए हम वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम, ऐसे गुरु के चरण में हम वंदना करते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। तो ये साक्षात हरित्वेन, हरित्व गुरु के अंदर हरित्व है, हरि का गुण है, साक्षात हरित्व, और वो क्यों है, वो हरित्व क्यों आ जाता है गुरु के अंदर, भगवान हरि के गुण अंदर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रिय हैं, और भगवान से प्रिय क्यों हैं, क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। जिस दिन भगवान के कोई व्यक्ति सेवक नहीं होगा तो वो हरित्व नहीं आएगा उसके अंदर, तो फिर ये आचारम माम विजानियाम वो नहीं होगा। इसलिए गौड़ीय वैष्णव इस सिद्धांत को भली भांति जानते हैं कि जो गुरु होते हैं, जो वो वैष्णव होते हैं, जो वैष्णव भगवान के बहुत प्रिय हैं, जो बहुत प्रेममयी सेवा करता है भगवान की, वो गुरु हो जाता है। गुरु कोई स्टैंप नहीं है कि हम किसी को बनाएं, परंतु जो व्यक्ति प्रेममयी सेवा करता है भगवान के वो इस योग्य बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, इस दृष्टि से कि वो भगवान के प्रिय सेवक है। सेवक और प्रभु में एक दृष्टि से देखा जाए तो अंतर नहीं होता, इसलिए सेवक को भी प्रभु तुल्य ही मानते हैं। इस दृष्टि से सेवक साक्षात भगवान है, यह कहा जाता है। अगर कोई जैसे मायावादी कहते हैं कि हम जीव ही भगवान हैं या परम सत्य है, तो वो सिद्धांत यह लागू नहीं होता। जीव गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि गुरु को हर दृष्टि से भगवान से अभिन्न नहीं समझना चाहिए। जीव तो जीव है और भगवान भगवान है अपने जगह में। इस प्रकार से यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। जरा घुमाइएगा, और इसी बात को यहां पर कहा गया है, गुरु और कृष्ण अचिंत्य भेदाभेद तत्व। पढ़िएगा,
गुरु कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इस दृष्टि से कृष्ण के समान है, परंतु सभी दृष्टि से समान नहीं है।
गुरु कृष्ण के बहुत प्रिय होते हैं, क्यों क्यों होते हैं प्रिय, क्योंकि वो उनके सेवक होते हैं, उन्होंने अपना प्राण अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण किया हुआ होता है, इसलिए वो प्रिय है, और इस दृष्टि से वो कृष्ण के समान माने जाते हैं, परंतु सभी दृष्टि से समान नहीं है। और इसके लिए उदाहरण क्या है, साक्षात हरित्वेन, ये श्लोक जो है गुरुवाष्टक का। और इसके बाद कविराज गोस्वामी अब शिक्षा गुरु की व्याख्या करेंगे। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण रसवरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूप। थोड़ा घुमाइएगा, भगवान कहते हैं, कविराज गोस्वामी श्लोक में कहते हैं, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण रसवरूप, तो न केवल दीक्षा गुरु की बात हो रही है, शिक्षा गुरु भी वो कहते हैं कृष्ण रसवरूप, वो भी कृष्ण के स्वरूप हैं, इसलिए यहां लिखा गया है कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि होने के नाते ये शिक्षा गुरु भी हैं, ये भी भगवान के समान माने जाते हैं, प्रतिनिधि माने जाते हैं। और कविराज गोस्वामी बताते हैं एई दुई रूप, कृष्ण भगवान शिक्षा गुरु दो तरह से होते हैं, एक है अंतर्यामी, कृष्ण अंतर्यामी के रूप में या परमात्मा के रूप में या चैत्य गुरु के रूप में जीव का मार्गदर्शन करते हैं। चैत्य, चेत नहीं, वो चैत्य होना चाहिए। चैत्य मतलब जो चित्त के अंदर है, विराजमान है। हम तो जानते हैं, तो गीता का प्राथमिक ज्ञान है कि श्री कृष्ण हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो अंदर ही से वो मार्गदर्शन करते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा गुरु होते हैं परमात्मा होकर, और ये तो अंदर से, ये भीतरी शिक्षा गुरु हुए। बाहरी शिक्षा गुरु भी है वही श्री कृष्ण, किसी एक अन्य व्यक्ति या जीव के माध्यम से किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वो भी शिक्षा गुरु होते हैं, वो भी भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए ये बाह्य रूप है भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु का रूप। और ऐसे शिक्षा गुरु भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मुक्त आत्मा, जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में तन्मय रहते हैं, तल्लीन रहते हैं पूरी तरह से। और दूसरे हैं जो भले उस स्तर तक न हो, परंतु वो जैसे हैं वैसे उपयुक्त उपदेश अन्यों को देते रहते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो ये शिक्षा गुरु हैं। वास्तव में दोनों ही अभिन्न हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं, जरा घुमाइएगा तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। नहीं, अच्छा दूसरा उससे। यहाँ लाइए, क्षमा कीजिए, ये सब आखिरी मिनट में लिख लिख के अभी हम लाए हैं, एक घंटे में तैयारी करके, तो अभी अभी वो लिख रहे थे सब। अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, पढ़िएगा यहीं से, चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य से।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आश्रय देने वाले भगवान और दीक्षा व शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई मूर्खतावश इनमें भेद करता है तो भक्ति मार्ग में अपराध करता है।
इसलिए हमें चाहिए कि हर एक भक्त के प्रति बड़े ही आदर और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो हर एक भक्त हमसे श्रेष्ठ है। ये भक्त की भावना होनी चाहिए कि हम निम्न श्रेणी के भक्त हैं और जितने भी अन्य भक्त हैं वो हमसे ऊंचे स्तर में हैं, और हम उनसे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे कुछ न कुछ हम सीख रहे हैं। कोई न कोई ऐसी बातें इनमें हैं जो हमारे लिए अनुसरणीय हैं। इसलिए हम अनेक भक्तों के उदाहरण को देख के, उनको देख के हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं हमारे भक्ति जीवन में। ये भाव अगर हमारा रहेगा तो फिर अवश्य ही हम भक्ति में बहुत ही तीव्रता से हम प्रगति करेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, जब हम भौतिक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो फिर ये अपराध जो हैं हमारे भक्ति में बहुत बाधक बन जाते हैं, और तरह तरह के अड़चन आने लगते हैं, और हमारी चेतना फिर ठीक नहीं रहती, चेतना शुद्ध नहीं रहती। इसलिए भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो इन अपराधों से बचें। वैसे भागवत में 11वें स्कंद में और अन्य जगहों में भी, ये भी एक विषय काफ़ी लंबा है, परंतु संक्षेप में अगर कहा जाए इस समय, ये बताया गया है कि भक्ति मार्ग जो है ये एक राजमार्ग की तरह है, जिसमें व्यक्ति अपनी आँखों को बंद करके भी चलता रहेगा तो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सरल है परंतु इसमें एक कठिनाई ये है कि अगर हम अपराध करते हैं तो फिर इससे हमारी प्रगति जो है वो बहुत ही कट जाती है, घट जाती है, बहुत बाधाएं आने लगती हैं, और जो भक्ति में रस है वो रस चले जाता है, हम रसहीन हो जाएंगे। जैसे कि हम रामचंद्रपुरी के बारे में पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, अंत लीला में, वो सब भक्तों की बहुत निंदा करते थे और अंततः वो ज्ञानी बन गए, भक्ति से उनका पूरा रस जो है वो निकल गया। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि भक्तों को ही हमें भगवान का रूप समझना चाहिए, इस दृष्टि से, ये दृष्टि से नहीं कि वो साक्षात भगवान है, परंतु इस दृष्टि से कि भगवान ये बहुत प्रिय हैं, ये भी भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए इस दृष्टि से हम उनको देखेंगे तो हमारी भक्ति जो है बहुत ही सुरक्षित होगी। आगे घुमाइएगा। ये जो पहले आना चाहिए थे अब आए, ठीक है, और घुमाइए। उदाहरण है अलग अलग छह सिद्धांतों के, हम पहले कह चुके हैं उनके बारे में। हाँ, अब हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि श्लोक क्रमांक 15, 16 और 17 में कविराज गोस्वामी ने वृंदावन के तीन प्रमुख विग्रहों की स्तुति की है, नमस्कार किया है उनके चरणों में, और ये तीन प्रमुख विग्रह हैं मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ जी या गोपीजन वल्लभ। उस समय जब कविराज गोस्वामी यहाँ पर आए थे, यहाँ पे इतने सारे मंदिर नहीं थे, केवल ये तीन मंदिर थे, फिर अन्य चार मंदिर भी बने और आज ये सप्त देवालय कहलाते हैं, गोस्वामियों के सात मंदिर, और उसके साथ साथ फिर और उसके बाद में फिर और कई मंदिर बने, आज तो हजारों की संख्या में जगह जगह आश्रम मठ और मंदिर बन चुके हैं। कविराज गोस्वामी के समय ये केवल तीन विग्रह और तीन मंदिर थे और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पहले अध्याय के जब हम अंत में पहुँचेंगे तो इन तीन विग्रहों के बारे में हम और थोड़ी चर्चा करेंगे, परंतु जब ये दीक्षा और शिक्षा गुरु की बात आ रही है तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बतला रहे हैं कि इन विग्रहों का और दीक्षा और शिक्षा गुरुओं का संबंध क्या है। तो पहले हैं मदन मोहन, दूसरे हैं गोविंद देव, तीसरे गोपीनाथ। तो मदन मोहन के बारे में क्या कहा, क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, पढ़िएगा।
दीक्षा गुरु मदन मोहन के प्रत्यक्ष रूप है।
दीक्षा गुरु जो होते हैं वो मदन मोहन के प्रतिनिधि होते हैं या प्रत्यक्ष रूप होते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि वेद में जो ज्ञान है या भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसके तीन विभाजन हैं या तीन कदम हैं भगवत प्राप्ति के लिए। एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध मतलब ये जान लेना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और ये सृष्टि क्या है, और मेरा भगवान से संबंध क्या है, ये सृष्टि का मुझसे संबंध क्या है, सृष्टि का भगवान से संबंध क्या है, ये सब जान लेना। और इसके लिए अधिष्ठाता देव हैं मदन मोहन। मदन मोहन जी के आश्रय ग्रहण करने से इंद्रिय तृप्ति और भोग वासना जो है, भावनाएं हैं हमारे हृदय के अंदर, उनका निवारण हो सकता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो नित्य संबंध है वो पुनः स्थापित हो सकता है मदन मोहन जी की कृपा से। तो मदन मोहन जी के सेवक कौन हैं? सनातन गोस्वामी पाद हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आदर्श दीक्षा गुरु हैं सनातन गोस्वामी, जो कि मदन मोहन जी के सेवक हैं। तो पढ़िएगा।
सनातन गोस्वामी आदर्श दीक्षा गुरु हैं क्योंकि वह मदन मोहन जी का आश्रय प्रदान करते हैं।
तो तो दीक्षा गुरु का कर्तव्य होता है कि वो श्री कृष्ण के चरण कमलों के का आश्रय जो है अपने शिष्यों को दिलाएं। तो सनातन गोस्वामी आदर्श दीक्षा गुरु हैं, उनके आराध्य देव हैं मदन मोहन, और वो उनके अनुयायियों को मदन मोहन जी का आश्रय दिलाते हैं, इसलिए ये आदर्श दीक्षा गुरु कहलाते हैं। तो मदन मोहन ये विग्रह है, संबंध देव कहलाते हैं। और आगे है गोविंद देव, तो पढ़िएगा गोविंद देव का महत्व क्या है इस संदर्भ में।
शिक्षा गुरु गोविंद देव जी के प्रत्यक्ष रूप हैं। गोविंद देव जी अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हुए शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं।
तो जिस प्रकार से मदन मोहन जो हैं वो मूल दीक्षा गुरु हैं, या दीक्षा गुरु मदन मोहन जी के प्रतिनिधि हैं या प्रत्यक्ष रूप हैं, उसी प्रकार जो शिक्षा गुरु होते हैं वो गोविंद देव या गोविंद जी के प्रतिनिधि या उनके प्रत्यक्ष रूप होते हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यही गोविंद देव जो हैं, इन्होंने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन को शिक्षा दी थी ना शिक्षा गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा गुरु का रूप धारण किया और अर्जुन को उपदेश दिया, तो उस समय ये गोविंद देव के रूप में दे रहे थे। और इस प्रकार से शिक्षा और दीक्षा गुरु का जो संबंध इन मूल तीन विग्रहों के साथ है, इसका उल्लेख यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और आगे कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से, फिर से उद्धव गीता से एक उदाहरण देते हैं। एक सुंदर श्लोक है जो कि उद्धव जी स्वयं कहते हैं। नैवोपयन्त्यपचति कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं वृद्ध मुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतां अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं विनक्ति। वो कहते हैं न एव उपयन्ति अपचितिं कवयः। जितने कवय हैं, जितने जो साधु हैं, जो दार्शनिक हैं, भक्त हैं, दार्शनिक को भी कवि कहते हैं, जो मुनिजन होते हैं, तो वो अपने कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर ब्रह्मायुषा अपि ही, अगर उनको ब्रह्मा जी जैसे भी आयुष प्राप्त हो जाए, फिर भी वो अपने कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो हैं अंतः बहिः, आप अंदर से भी और बाहर से भी आचार्य चैत्य वपुषा, आप अंदर चैत्य गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं और बाहर से आचार्य के रूप में आप प्रकट हुए हैं। किस लिए? स्वगतिम व्यनक्ति, आपके पथ में सारे बद्ध जीवों को ले आने के लिए, अर्थात उनका उद्धार करने के लिए आप ही प्रकट हुए हैं। अंदर से आप चैत्य गुरु बन के आए हैं और बाहर से आप आचार्य के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से आप आए हैं। इसका मतलब है कि भगवान भी अपने अलग अलग तरह से अलग अलग जीवों का उद्धार करते हैं। शिक्षा गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान से अभिन्न है, हम ये देख चुके हैं। कभी कभी स्वयं भगवान साक्षात शिक्षा गुरु बन के आते हैं और कभी वो जीव को शक्ति प्रदान करते हैं शिक्षा गुरु बनने के लिए, और उनके माध्यम से वो कार्य करते हैं। और शिक्षा गुरु जब अंतर्यामी के रूप में वो होते हैं, और कैसे करते हैं, वो भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में वो कहते हैं। राजा राम प्रभु को बहुत कष्ट दे रहे हैं, बार बार उठना बैठना पड़ रहा है। अरे उन्होंने श्लोक नहीं लिखा वहां, ठीक है कोई बात नहीं। यहां कविराज गोस्वामी इस श्लोक का प्रमाण देख के कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हृदय में स्थित होकर, अंतर्यामी होकर कैसे शिक्षा गुरु होते हैं। तो आपको ये श्लोक तो पता है, तो हम ये श्लोक हम सब साथ में बोलेंगे, हालांकि ये लिखा नहीं गया है, ठीक है। तेषां सतत युक्ता नाम। आप में से कितने भक्तों को ये श्लोक पता है, कंठस्थ है, तो हम ये श्लोक सब साथ में बोलेंगे। तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तम् येन मामुपयान्ति ते। भगवान क्या कहते हैं, तेषां उनके लिए, किन के लिए, उन लोगों के लिए जो कि मेरे सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस चमाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तो ऐसे लोगों के लिए बुध भाव समन्विता, जो पूरे अपने भाव से मेरी सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तेषां सतत युक्ता नाम, जो सतत युक्त हैं मेरी सेवा में, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा भजन कर रहे हैं, प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा कर रहे हैं, भगवान कहते हैं ददामी, मैं प्रदान करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं भेंट देता हूँ। क्या भेंट देता हूँ, बुद्धि योगम ते, वो दिव्य बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ, दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे क्या होता है, येन माम उपयान्ति ते, जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों के हृदय में स्थित होकर ज्ञान का प्रकाश जो है वो जला डालते हैं, और ऐसे ज्ञान प्रकाशित अंदर से होने से भक्त जो है और भी तीव्रता से भगवान से आसक्त हो जाता है, भगवान का प्रेम और सेवा करने लगता है। तो अंदर ही से भगवान मार्गदर्शन करते हैं। तो ये एक उदाहरण है, भगवान अंतर्यामी होकर शिक्षा गुरु का रूप कैसे स्वीकार करते हैं। दूसरा उदाहरण जो कविराज गोस्वामी यहाँ दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्यामी बन के मार्गदर्शन करते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, वो है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ कमल पुष्प के ऊपर, तो और तो कोई था नहीं, कोई उनके लिए डॉक्टर तो था नहीं ऑपरेशन करने के लिए, और कोई थे नहीं, उनका जन्म तो कोई हॉस्पिटल में हुआ नहीं, उनका जन्म तो कमल पुष्प के ऊपर हुआ, अकेले थे वो, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। जिनका जन्म स्वयं हुआ अर्थात कोई भौतिक माता पिता नहीं थे उनके लिए, तो उन्होंने उधर उधर देखा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उनको कुछ पता नहीं चला। और अचानक उन्होंने ये शब्द सुने, दो अक्षर सुने, त और प, फिर उन्होंने जान लिया कि मुझे तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या करते करते देवताओं के 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और अंदर ही से भगवान ने ज्ञान का प्रकाश किया, और बाहर से भी भगवान प्रकट हुए, उनसे हाथ मिलाया, हेलो हाउ डू यू डू किया, और उनको फिर उपदेश दिया, उनको उन्होंने ये भागवत का ये सार सुनाया, चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं, ये दूसरे स्कंद में पाया जाता है। तो इन 4 श्लोकों को बोलने के पहले भगवान और 2 श्लोक बोलते हैं, तो 6 श्लोक जो हैं यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, और अंत में फिर ये साबित करते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया शिक्षा गुरु बन के अंदर से हृदय में। तो ये एक उदाहरण है शिक्षा गुरु का, जब स्वयं भगवान शिक्षा गुरु बने। और दूसरा उदाहरण है बिल्वा मंगल ठाकुर का, ये भी हम, इसका उल्लेख भी हम संक्षेप में कर चुके थे पिछली बार। चिंतामणि जयति सोम गिरिर गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि पिंच मौलिहि यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। तो बिल्वा मंगल ठाकुर के लिए चिंतामणि जयति, तो चिंतामणि एक वेश्या थी परंतु भक्त भी थी, और चिंतामणि ने बिल्वा मंगल ठाकुर को मार्ग दिखाया कि तुम मुझसे इतने आसक्त हो और मुझे प्राप्त करने के लिए इतना इतनी दृढ़ता से प्रयास कर रहे हो, अगर यही दृढ़ता, यही आतुरता, यही लोभ अगर भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए तुम्हारे अंदर होता तो आज कितना अच्छा हो जाता। तो ये एक वाक्य सुन के बिल्वामंगल ठाकुर का जीवन बदल गया। चिंतामणि को छोड़कर वो वृंदावन की ओर चले। तो चिंतामणि जो हैं वो भी एक शिक्षा गुरु हुई बिल्वामंगल ठाकुर के लिए। तो शिक्षा गुरु फिर तीन प्रकार के हुए। अब पहले तो हैं साक्षात भगवान जो चैत्य गुरु होते हैं अंतर्यामी, फिर दूसरे हैं जो चिंतामणि हैं वर्तमा प्रदर्शक गुरु। वर्तमा मतलब पथ, जो पथ दिखलाने वाले गुरु हैं वो भी एक प्रकार के शिक्षा गुरु ही हैं। हमें शिक्षा देते हैं कि कृष्ण के शरण में जाओ, इस्कॉन मंदिर में जाओ। तो ये वर्तमा प्रदर्शक गुरु। और तीसरे हैं साधारण शिक्षा गुरु जो उपदेश देते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो चिंतामणि जयति, तो बिल्वामंगल ठाकुर जय जयकार करते हैं चिंतामणि का जो कि उनकी शिक्षा गुरु थी। और सोमगिरी गुरुर में, तो सोमगिरी वो मेरे दीक्षा गुरु हैं ऐसे बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं। और शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिंछ मौली ही। तो शिक्षा गुरु स्वयं श्री कृष्ण हैं जो कि अपने अपने बालों में एक मोर पंख जो है वो धारण करते हैं। यत पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री ही। जिनके चरणों में श्री ही अर्थात मूल श्री राधा रानी निवास करती हैं और जो माधुरी रस का स्वाद श्री कृष्ण के साथ ले रही हैं। तो ये दूसरे उदाहरण हैं शिक्षा गुरु के। जरा घुमाएंगे आप। पढ़िएगा।
भगवान के शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करने के उदाहरण, पहला है ब्रह्मा जी, दूसरे हैं बिल्वामंगल ठाकुर।
तो ये श्लोकों की संख्या भी हमने दी है, आप में से जो पढ़ना चाहते हैं चैतन्य चरितामृत में आप जान पाएंगे इस क्रम से कविराज गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। और फिर अंत में शिक्षा गुरु अंतर्यामी के रूप में जब वो हैं, वो उसके बाद जो भक्त जब शिक्षा गुरु बनते हैं तो उसके बारे में एक श्लोक में चर्चा करते हैं। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु होए कृष्ण महंत स्वरूपे। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, क्योंकि हम इस चैत्य गुरु को साक्षात अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए कभी कभी महंत या एक भक्त के रूप में वही चैत्य गुरु बाहरी रूप से प्रकट होते हैं हमारे सामने, हमें उपदेश करने के लिए, हमें कुछ सिखलाने के लिए। क्योंकि एक बद्ध जीव साक्षात श्री कृष्ण को नहीं देख सकता, इसलिए वही श्री कृष्ण एक भक्त के माध्यम से प्रकट होते हैं और हमें उपदेश दिलाते हैं। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने पहले शब्द का जो परम सत्य का पहला सिद्धांत है गुरुन, इस शब्द की व्याख्या उन्होंने की है। और अगली बार जो अन्य पांच सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे संक्षेप में। सबसे अधिक जो चर्चा है उन्होंने गुरु के ऊपर किया है, अन्य विषयों को बहुत ही संक्षेप में उन्होंने चर्चा करके छोड़ दिया है। और फिर इसके बाद में इसी अध्याय में दूसरा श्लोक होगा मंगलाचरण का, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से भगवान को नमस्कार किया है। अगर समय हो तो अगली बार करेंगे चर्चा या तो उसके बाद में। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या कोई टीका है तो हिंदी में पूछिए प्रश्न।
आपने कहा कि जीव कोई भी गुरु बन सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हाउ डू अंडरस्टैंड दैट कि गुरु तत्व और जीव तत्व भी अलग है, अलग अलग तत्व है ना। सो
हम समझते हैं कि जीव भी गुरु हो सकता है, परंतु हम कैसे समझ सकते हैं कि जीव तत्व और गुरु तत्व अलग है? वैसे गुरु तत्व क्या है, गुरु कौन है वास्तव में? केवल कृष्ण है, कृष्ण ही गुरु हैं। गुरु तत्व तो कृष्ण है, परंतु वही कृष्ण अनेकों के माध्यम से प्रकट होते हैं बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। वही गुरु तत्व प्रकट होता है जगह जगह। जैसे समझ लीजिए, गंगोत्री से गंगा जी बह रही है, बहते बहते अलग अलग स्थानों में आते हैं, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर बहते हुए फिर यहाँ तक प्रयाग, आगे चल के कई तट पे कई स्थान होते हैं। जल वही है, उसी प्रकार से मूल गंगोत्री जो है गुरु तत्व है कृष्ण। कृष्ण वही शक्ति प्रदान करते हैं किसी जीवों में, कभी कभी स्वयं भगवान भी उस पद को स्वीकार करते हैं, वो सेवा करते हैं, जैसे कि अर्जुन के साथ किया, ब्रह्मा जी के साथ किया, बिल्वा मंगल ठाकुर के साथ किया। तो गुरु तत्व है कृष्ण, और जब कृष्ण अन्यों के माध्यम से प्रकट होते हैं तो वो वही गुरु तत्व उनके माध्यम से आता है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुक्रवार है ना, तो फिर अब मंगलवार को हम मिलेंगे, ठीक है, 1 बजे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।